नमस्कार आदाब दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपके मोबाइल वाणी पर क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम लेकर, जहां आपको मिलेंगे आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़े सारे अनसुलझे सवालों के जवाब, वो भी आपके चहेते शिक्षक के द्वारा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के साथ।
छात्रों, मैं पुनः आज आपसे समाजशास्त्र के 13वें अध्याय की ओर मुखातिब हूँ, जहाँ आपको भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें सर्वप्रथम गोविंद सदाशिव घुरिया के बारे में पढ़ना है। गोविंद सदाशिव घुरिया का जन्म 12 दिसंबर 1893 को मालवान पश्चिम भारत के कोंकण राष्ट्रीय प्रदेश के छोटे से कस्बे में हुआ था। जीएस घुरिया को भारत में एक संस्थागत के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विभाग में शिक्षण कार्य की अध्यक्षता की। घुरिया की पहचान की जाती है और उनकी घुरिया जो है, उन्होंने उनके जो बेहतरीन कार्य थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाति की तथा प्रजाति पर शोध निबंध किया, जो 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। उनके विचारधारा के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई अथवा कपाल का भार अथवा खोपड़ी का वह हिस्सा जहां दिमाग की स्थिति होती है, के अनुसार अलग अलग विभिन्न प्रजातियों में बांटा गया। भारत को विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास के अध्ययन की एक विशिष्ट प्रयोगशाला मानी जाती है। घुरिया ने अपने समकक्ष पश्चिमी समाजशास्त्रियों से थोड़ा विभिन्नता थी उनमें। उन्होंने यह कहा था कि भारत में जहाँ उच्च जातियाँ आ रहे हैं, वहीं निम्न जातियाँ आना रहे हैं, जो पूर्णतः सत्य नहीं है, जैसा कि पश्चिमी समाजशास्त्री कहते हैं। घुरिया की साख उनके द्वारा कैम्ब्रिज में किए गए डॉक्यूमेंट के शोध निबंध के आधार पर बनी, जो आगे चलकर 1932 में कास्ट एंड रेस इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। घुरिया की जाति की एक विस्तृत परिभाषा दिए जाने के कारण भी जाने जाते हैं। उनकी परिभाषा 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बल देती है। जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडीय विभाजन पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जाति समाज कई बंद पारंपरिक अन्य खंडों से बटा हुआ है। प्रत्येक जाति ऐसा ही एक खंड है, या क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। 2, जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होता है। प्रत्येक जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान होती है। 3, संस्था के रूप में जाति सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती, विशेषकर साथ बैठकर भोजन करने इत्यादि पर। 4, सोपानिक तथा प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत को मानते हुए जाति में विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित होते हैं। 5, जाति व्यवस्था के चुनाव को सीमित कर देती है, जो जाति की तरह जन्म पर आधारित तथा वंशानुगत होता है। 6, जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति में अंतः विवाह यानी जाति में ही विवाह के साथ बहिर्विवाह के नियम से भी जुड़े होते हैं, अथवा किसकी शादी किसके साथ हो सकती है। घुरिया की परिभाषा जाति के व्यवस्थित अध्ययन में सहायक है, जो उनके जाति तथा प्रजाति की जो अवधारणा है, या उन्होंने जिस पर उन्होंने जो काम किया, यह काफ़ी प्रचलित एवं मान्य है। अब हम चलते हैं दूसरे समाजशास्त्र की ओर। ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी 5 अक्टूबर 1894 को एक मध्य वर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, जहां की उच्च शिक्षा की लंबी परंपरा थी। विज्ञान में स्नातक, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। डीपी मुखर्जी ने परंपरा एवं परिवर्तन पर अपने विचार दिए, शोध प्रबंध किए। डीपी मुखर्जी भारतीय इतिहास तथा अर्थव्यवस्था के प्रति अपने असंतोष के कारण समाजशास्त्र की ओर जुड़े। उनका यह मानना था कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था उसका निर्णायक एवं विशिष्ट लक्षण है, और इसलिए वह प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के आवश्यक है कि इस संदर्भ में उससे जुड़ा हो। डीपी ने यह तर्क दिया, यानी ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी ने यह तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति तथा समाज पाश्चात्य अर्थ में व्यक्तिवादी नहीं है। एक औसत भारतीयों की आकांक्षाओं का रूप कम या अधिक उसके सामाजिक सांस्कृतिक वर्ग द्वारा किया जाता है, और वह शायद ही उससे विचलित होता है। अतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था की दिशा मुख्यतः समूह, संप्रदाय तथा जाति के क्रियाकलापों द्वारा निर्धारित होती है, न कि स्वैच्छिक व्यक्तिगत कार्यों के द्वारा। इस प्रकार ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी बता रहे हैं कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन के आंतरिक तथा बाह्य स्रोत हमेशा मौजूद रहते हैं। पश्चिमी समाज में आंतरिक परिवर्तन का अत्यधिक सामान्य स्रोत अर्थव्यवस्था है, परंतु यह भारत में उतना प्रभावशाली नहीं, जैसा कि डीपी मुखर्जी मानते हैं कि भारतीय संदर्भ में वर्ग संघर्ष जातीय परंपराओं से प्रभावित होता है और उससे अपने में सम्मिलित कर लेता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गव्यात्मक भारतीय समाज या गत्यात्मक भारतीय समाज का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक और आर्थिक कारणों को देखना होगा। डीपी मुखर्जी के अनुसार उन्होंने बल देकर कहा कि यह केवल हिंदुओं के लिए सही नहीं है कि बल्कि भारत की इस्लामी संस्कृति के लिए भी सही है। भारतीय इस्लाम में भी सूफियों ने पवित्र ग्रंथों की अपेक्षा प्रेम तथा अनुभव पर अधिक बल दिया, जिससे ने परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः डीपी के लिए भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से अनुभव और प्रेम परिवर्तन के उत्कृष्ट कारण है। डीपी मुखर्जी परंपरा के समीक्षक थे, जो उन्होंने विरासत में या परंपरा की जो समीक्षा थी उन्हें विरासत में मिली थी, और साथ ही वे आधुनिकता के प्रशंसक एवं आलोचक भी थे, जिसके कारण उन्होंने स्वयं के बौद्धिक परिप्रेक्ष्य को आकार प्राप्त हुआ। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।